ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सभी स्वरूपों में विराजमान भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि काल के कोटि कोटि भक्तजनों की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भगवत स्वरूप संत महापुरुषों को सादर प्रणाम। राम कथा में पवित्र आस्था रखने वाले सभी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं बहनों को यथा योग्य अभिनंदन कर रामकथा के उपसंहार की ओर अपनी कथा का प्रारंभीकरण हो रहा है। जिस बात के लिए भगवान ने अवतार लिया वो काम कल पूरा हो चुका। कहने के लिए तो इतनी बात है, ब्रह्मा जी ने रावण को मारने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की थी, परंतु रावण को मारना ही मुख्य काम नहीं था, एक आदर्श स्थापित करने का भगवान का यहां अवतार का मुख्य प्रयोजन था। जन जन के मन में भगवान की भक्ति उदित करने के लिए भगवान अवतार लिए थे। हनुमान जी महाराज की भक्ति को अब भगवान प्रकट करते हैं, भरत जी की भक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान अयोध्या में रावण का वध करके पुष्पक विमान से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए थे और वहां वे भरद्वाज ऋषि से पूछने लगे कि महाराज मैं तो अभी दंडकारण्य में घूम रहा था, भरत अयोध्या का ठीक ढंग से शासन करते ही होंगे ना, अयोध्या के प्रजावासी सब भरत जी के राज्य से संतुष्ट है ना, अयोध्या में सब प्रकार का सुकाल रहता होगा ना, और मेरी माताएं जीवित है ना। भगवान की बात सुनकर भरद्वाज ऋषि कहने लगे, तुम जिनका कुशल क्षेम चाहते हो उनका कभी अकुशल होने का प्रश्न ही नहीं है राम। तुम तो भरत के कुशल क्षेम की बात कहते हो, हम कहते हैं भरत ने तो तुम्हारे ही समान जटा वल्कल वस्त्र धारण कर तुम्हारे ही चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर तुम्हारे ही शुभागमन की प्रतीक्षा में वो तुम्हारा ही भजन कर रहा है। और इधर दंडकारण्य में जो कुछ घटना हुई, रावण आदि का जो विनाश हुआ, वो सब मैंने जान लिया है। हम ऋषि मुनियों का मन तुम्हारे पास रहता है, अतएव तुम्हारी लीलाएं हमारे अंदर स्वतः ही पैदा हो जाती है। हे राम, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, न तुम जन्मते हो न तुम्हारा अंत होता है। तो जिसका आदि भी नहीं उसका अंत भी नहीं तो उसका मध्य तो हो ही कैसे सकता है। पहले ये संसार कुछ नहीं था, केवल तुम ही तुम थे। जब ये संसार नहीं रहता है और तुम ही रहते हो तब इसको प्रलय की अवस्था बोलते हैं। और जब तुम्हारे अंदर सृष्टि पैदा करने की इच्छा होती है तो वही सृष्टि कहलाती है। तुम बड़े कायदे से अपना नियम पालते हो प्रभु, सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को पैदा किए, इसलिए ब्रह्मा विश्व को बनाने वाले हैं, विश्वकर्मा भी है। तो विश्वकर्मा आपसे जुड़ा हुआ है और सारे संसार के आप पितामह हैं, प्रपितामह हैं, इसलिए आप अपने नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा किए हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी पर आप ही का अनुशासन चलता है। हे भगवान विष्णु, आप शेष सैया पर सोते हैं, वो शेष आपके साथ लक्ष्मण के रूप में विराजमान है और आपके चरणों में लक्ष्मी का निवास रहता है। वो लक्ष्मी कभी आपके चरणों को छोड़ती नहीं, अतएव दंडकारण्य में रामावतार में भी सीता आपके साथ रही है। जैसे मनुष्य के स्वप्न उसके मन में ही पैदा होते हैं, ऐसे ही संसार आपके मन में ही पैदा होता है। और जैसे मनुष्य अपने आप ही स्वप्न पैदा करता है और स्वप्न में खुद ही सब कुछ होता है, ऐसे आप ही संसार में सब कुछ है। और जैसे स्वप्न को देखने वाला वो स्वप्न से असंबद्ध है, ऐसे आप भी संसार को बना करके भी, संसार के रूप में रह करके भी संसार से अलग के अलग हो। परंतु मूर्ख लोग आपके अंदर भेद करते हैं। ज्ञानी लोगों की दृष्टि में जगत के आधार आप हो, जगत के परिपालक आप हो, संपूर्ण भोक्ता आप हो और भोज्य भी आप हो। देखो, रोटी भी आप हो और खाने वाले भी आप हो, कैसी विचित्र बात है आप में। दृश्यते श्रूयते यद्यत् स्मर्यते वा रघुत्तम, जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ सुना जाता है, जिस जिसका भी तुम स्मरण करते हो, वो सब कुछ तुम ही तुम हो। तुम्हारे बिना यहां कुछ भी नहीं है। माया सृजति लोकांश्च स्वगुणैर अहमादिभिः। आपकी माया है वो तरह तरह के चीजों को बनाती है और आप में से ही बनाती है। जैसे कुम्हार है वो मिट्टी को लेकर कभी घड़ा बनाता है, कभी सिकोरा बनाता है, तो कभी तवा बनाता है, कभी परात बनाता है, मिट्टी से दीपक बनाता है। वो एक ही मिट्टी है, अनेक अनेक आकृतियों में दिखती है। इसी प्रकार से संसार के अनेक नाम रूप वस्तु सब आप ही से बने हुए हैं। आपकी शक्ति से सारे संसार का काम वैसे ही चलता है जैसे चुंबक के द्वारा लोहे के अंदर संचालन होता है। मूर्ख लोग इस बात को समझते नहीं है और वे समझते हैं कि हम करते हैं, उसने कर दिया, जो बुरा किया उसने बुरा कर दिया, और अपनी तरफ से कोई काम अच्छा होता है तो हमने अच्छा किया। करने का संबंध आत्मा के है ही नहीं। विराट जगत भी आप हो और सूक्ष्म जगत भी आप हो। सूक्ष्म जगत माने प्रत्येक शरीरों में दिखाई रहने वाली आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर है, ये आप हो। और ये जो जितने बाहरी शरीर पदार्थ आदि दिखते हैं ये विराट रूप, ये भी आप हो। अवतार कथाम लोके ये गृणन्ति गायन्ति च। जो व्यक्ति आपके अवतारों को लेकर के प्रसन्न होते हैं, गाते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, वे अनन्य भाव से आप ही की भक्ति करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आपने ही पहले ब्रह्मा जी से प्रार्थना सुनकर के पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए रघुकुल में जन्म लिया, अवतार लिया, और आपने देवताओं का पूरा कार्य कर दिया। ये कार्य कोई दूसरा कर नहीं सकता था। अब आप कई हजार बरस तक मनुष्य शरीर में रहिए और अनेक प्रकार के दुष्कर कर्म करते हुए संपूर्ण संसार का हित कीजिए। लोगों के पाप और पुण्य का नाश कीजिए। असल में तो पाप पुण्य के नाश से ही कल्याण होता है। वास्तव में पाप का नाश ही सबसे बड़ा नाश होता है। तो हे प्रभु, आप हमारे यहाँ कुटिया में रहिए, आज आज कल आप पधार जाइए। भगवान ने कहा आज तो यहीं रहने के लिए आए थे। ससैन्य पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणे नवा। फिर उसके बाद राम जी महाराज वहीं पर रात्रि में विश्राम किए। थोड़ी देर बाद राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। देखो, हनुमान जी को बुलाकर भी बड़ी विचित्र बात कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो और भी साफ लिखा है, हनुमान जाओ और भरत की क्या इच्छा है, क्या रुचि है, वो देख के आओ। यहां भी कुछ ऐसी बात कहते हैं। असल में लोग देखते हैं कि हनुमान जी महाराज को भगवान ने भरत के विषय में थोड़ा संदेह क्यों व्यक्त किया। ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी महाराज भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, परंतु उस भक्ति के अंदर थोड़ी एक हनुमान जी में कमी है कि वो अभी विरह भक्ति को नहीं जानते हैं, संयुक्त भक्ति को जानते हैं। और विरह भक्ति होती है वो संयोग भक्ति से ऊंची होती है। जब भगवान साथ में रहते हैं और उनसे प्रेम किया जाता है, ये संयुक्त भक्ति है। और भगवान अलग रहे, भक्त अलग रहे, तब जो भक्त के मन में भगवान के प्रति एक लगन होती है, एक दर्शन की पिपासा होती है, एक भगवान के लिए व्याकुलता होती है, वो भगवान की विरह भक्ति होती है। तो विरह भक्ति है ये संयोग भक्ति से बहुत विलक्षण होती है। विनय भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने देखा हनुमान जी को भरत से ज्यादा और कौन पात्र मिलेगा, इसलिए भगवान सीधे तो हनुमान जी को भेजते नहीं है, थोड़ी ऐसी बात कहते हैं कि जिससे भरत जी के प्रेम को अच्छी तरह से पहचान सके। कहते हैं देखो हनुमान, तुम अयोध्या में जाओ और वहां सबका कुशल क्षेम ज्ञात करो कि सब राजी खुशी है ना। पहले ही पहले श्रृंगवेरपुर जाओ, निषाद राज को मेरे आने की बात कहो, फिर नंदीग्राम में जाना, मेरा भाई भरत रहता है वहां पर पहुंचना, मेरा लक्ष्मण का और सीता का कुशल क्षेम कहना, सीता का हरण होना, बंदरों के साथ मित्रता होना, सीता की खोज होना, फिर समुद्र के वहां पहुंचना, पुल का बनना और लंका पर चढ़ाई करके रावण आदि को मारना, ये पूरी कथा कहना। परंतु ये कथा कहते हुए भरत के चेहरे को देखता रहना, भरत के चेहरे पर क्या क्या भाव आते हैं। जब मेरा उत्कर्ष का वर्णन चले तो भरत के मन पर क्या बीतती है, और जब मेरे रोने की खबर बताओगे तो भरत पर क्या बीतती है, सब तुम भरत के चेहरे पर दृष्टि रखना। भरत को यदि वहां राज्य ज्यादा प्रिय लगे तो आकर हमको बता देना कि भरत को ये अयोध्या का राज्य बहुत प्रिय लग रहा है, तो हम हमारे जंगल में रहने के अभ्यासी तो हैं, हम जंगल में रहने लग जाएंगे, और तुम ये सब समाचार लेकर के जल्दी आना। ये जल्दी आने की बात कही, लेकिन हनुमान जी आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? हनुमान जी को भरत जी की जब विरह भक्ति का ज्ञान हो जाता है ना, तब एक देखते हैं कि ये जो बात राम जी बोलते हैं ये सब राम जी महाराज की निगाह में है, और जो है मुझे और क्या बताए, वो भरत की भक्ति में ही उलझ गए, बस यही बात है, इससे ज्यादा क्या कहे। हनुमान जी वहां से रवाना हुए, श्रृंगवेरपुर पर आए, निषाद राज से कहने लगे, निषाद राज दशरथ नंदन राम जो तुम्हारे सखा है वो भाई भारिया के साथ तुम्हें कुशल क्षेम कह रहे हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए हैं और तुम उनको बहुत जल्दी देखोगे। इतना कह करके हनुमान जी आगे चले गए और अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सरयू नदी का राम तीर्थ और उसके बाद नंदी गांव में वे पहुंच गए। नंदी गांव के अंदर उन्होंने भरत जी को देखा, बड़े दीन अवस्था में है, रो रहे हैं, काले मृग का चर्म पहन रखा है, शरीर के ऊपर खूब मिट्टी जमी हुई है, जटावलकल वस्त्र धारण किया है, कन्दमूल फल आदि का आहार करते हैं, और उनका जो होठ है वो भगवान के नाम के अंदर चल रहा है। देखो होठ तो अपने भी चलते हैं, चल सकते हैं, लेकिन राम चिंता परायण नहीं होते। हम लोग राम नाम तो लेते हैं लेकिन राम नाम परायण नहीं होते, अंतर मन से भगवान के शरण होकर के नाम नहीं लेते। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, होई राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज। भगवान का नाम तो लेओ लेकिन भगवान के होकर के लेओ, देखो राम राम करते हुए हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम हमारे अपने राम जी का नाम ले रहे हैं, अपने राम जी का नाम। नाम के अंदर मिठास आना चाहिए। भगवान की कथा भी सुने तो अपने भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे कोई स्त्री अपने पति की बात सुनती हो, जैसे कोई बेटी अपने बाप की बात सुनती हो, जैसे कोई माँ अपने पुत्र की बात सुनती हो, ऐसे अपना मान करके सुनती, ऐसे अपना मानकर सुनना चाहिए। तो राम चिंता परायण भरत जी को देखा, पृथ्वी का शासन भी करते हैं न्यायानुकूल और चरण पादुका की पूजा करते हैं, उनके पास जितने मंत्री हैं वो सब काषाय वस्त्र पहने हुए हैं, और जो है साक्षात मूर्तिमान धर्म के राम रूप में भरत जी के दर्शन करके हनुमान जी कृतार्थ हो गए और हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, यम त्वं चिंतय से रामम। देखो यह हनुमान जी आए थे ना, ये बंदर के रूप में नहीं आए, यह मनुजाकृति मनुष्य की आकृति में आए भरत जी महाराज के यहाँ। वे वहां मानुषम वपुर आश्रित है, मानस रूप में, मानस वपु माने मनुष्य का रूप बनाकर आए। हनुमान जी कहने लगे कि भाई तुम जिसकी बार बार याद कर रहे हो वो दंडकारण्य में विराजमान राम आपका कुशल क्षेम जानने के लिए मुझे भेजे हैं और स्वयं भी बड़े कुशल पूर्वक विराजमान है। हे भरत जी, मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। वे राम बस अब इसी मुहूर्त में अपने भाई और भारिया के साथ यहां आने वाले हैं। उन्होंने कुल सहित रावण को मार दिया है, सीता को प्राप्त कर लिया है, अपना पूरा काम उनका सिद्ध हो चुका है और वे थोड़ी देर में आने वाले हैं। इतना सुनते ही भरत जी महाराज ये कहना ही भूल गए कि ये शुभ समाचार कौन सुना रहा है। भरत जी तो सुनते ही एकदम चक्कर खा करके गिर गए, हर्ष मूर्छित है, हर्ष से मूर्छित हो गए। और थोड़ी थोड़ी देर में कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसे करके उनके साथ गले मिलते, फिर मूर्छित होते, फिर गले मिलते हैं, आनंद के आंसू उनके बहते जा रहे हैं। भरत जी महाराज कहने लगे, देवो वा मानुषो वा तुम, अरे तुम देवता हो कि मनुष्य हो, पर मेरे पर कृपा करने के लिए आए हो इसमें संदेह नहीं है। हे सौम्य, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे बोलने में बड़ा प्रेम टपक रहा है। हम तुमको लाखों लाखों गाय दान में देते हैं और सैकड़ों सैकड़ों गांव हम तुमको देते हैं और हम तुमको अनेक प्रकार के आभूषणों को पहनी हुई कन्याएं दान में देते हैं, और कुछ तुमको लेना हो सो ले हो। भरत जी महाराज फिर कहने लगे कि बहुत वर्ष हो गए मुझे राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला, वो दंडकारण्य में गए और मुझे कोई संदेश भी उन्होंने नहीं भेजा, आज पहली बार अपने स्वामी के विषय में कुछ बात सुन रहा हूं। तुम्हारी जो है ये वाणी मुझे बहुत प्रिय लगती है, कल्याणी बथ गाथे यम लौकिकी प्रतिभाति में। तुम्हारी इस बात से हमको लोक में एक कहावत है कि मनुष्य को हरदम जीने की राह देखनी चाहिए, क्योंकि जीता हुआ आदमी 100 वर्ष तक जीता है तो न जाने कितने कितने उसको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती है। एति जीवन तमानंदो नरम वर्ष शतादपि, सैकड़ों वर्ष तक जीने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए ताकि उसको ऐसे ऐसे आनंद मिले, भगवान के विषय में सुनकर के वो आनंदित हो जाए। तुम मुझे पूरी राम कथा सुनाओ। चित्रकूट पर्वत तक तो मैं खुद राम कथा में सम्मिलित था, मुझे पूरी राम कथा सुनाओ। अब हनुमान जी पूरी राम कथा सुनाए कि इस प्रकार से भगवान आपकी याद बहुत आने से चित्रकूट को छोड़कर अगस्त ऋषि के कहने से पंचवटी में रहने लगे और वहां एक बार रावण मारीच के संग में आया। मारीच तो मृग बन गया और राम सीता को दूर ले गया और पीछे राम और लक्ष्मण को दूर ले गया और सीता को पीछे से रावण ने हर लिया। अब सीता की खोज के लिए निकले वे राम जी शबरी के कहने से पंपा सरोवर में आए। वहां सुग्रीव ने मुझे उनका ज्ञान करने के लिए भेजा। मैंने इनको भगवान का रूप समझ करके सुग्रीव से मित्रता करवाई और फिर राम जी ने सुग्रीव के शत्रु बाली को एक बाण से मार दिया और किष्किंधा का राज्य दे दिया। तत्पश्चात सीता जी को खोजने का काम मुझे दिया गया। मैं समुद्र पार करके लंका में गया और रावण को मैंने खूब समझाया। फिर वो रावण ने माना तो मैंने लंका को ध्वस्त कर दिया और फिर मैं राम जी के पास आया और राम जी समुद्र के ऊपर पुल बनाकर लंका में प्रवेश करके रावण को मार दिए और अब वो सीता को लेकर के आ रहे हैं। आनंद में डूबे हुए भरत जी महाराज ने कहा, ओहो देवतानि च यावन्ति, अरे शत्रुघ्न इससे बड़ा और क्या हमारे लिए सौभाग्य का दिन होगा, आज हमको राम जी की कथा सुनने को मिली है। राम जी की कथा संसार में देखो शत्रुघ्न बड़े दुर्लभ है। राम जी का ध्यान तो रोज कर लेते हैं परंतु राम की कथा कहां सुनने को मिलती है। जाओ शत्रुघ्न अयोध्या के सभी मंदिरों को सजाओ, वहां पर खूब जो है फल फूल वगैरह लेकर के देवताओं की पूजा करो। जो स्तुति पाठक हैं, बंदी लोग हैं, वैतालिक हैं, उनको भी बुलाओ, रानियों को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाओ, अच्छे अच्छे मंत्रज्ञ ब्राह्मण हैं उनको बुलाओ, कह दो कि आप सब लोग भरत जी के पास पहुंच जाए। शत्रुघ्न ने जाकर के नगर के अंदर जैसी जैसी भरत जी की आज्ञा थी वैसे वैसे भेज दिया और जगह जगह उन्होंने तोरण द्वार बनाए, हर महल के ऊपर झंडियां लगाई, नाना प्रकार के उपहार लेकर लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया। लोग जो है राम जी की दर्शनों की इच्छा से घरों से बाहर आ करके खूब इकट्ठे हो गए। लाखों लाखों की संख्या में लोग वहां राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हजारों हाथी हजारों लाखों घोड़े वहां इकट्ठे हो गए। बहुत सी स्त्रियां तो पालकियों में बैठ बैठ कर आई। इस प्रकार से सब नंदीग्राम में इकट्ठे हो गए। भरत जी महाराज ने नंदीग्राम के राज सिंहासन पर रखे हुए राम जी के चरण पादुकाओं को सिर पर लिया और वो भी वहां पर खड़े हो गए और वहां रह करके उन्होंने प्रतीक्षा की कि अब जो है राम आ सकते हैं, अब राम आ सकते हैं। उनके पास में शत्रुघ्न जी खड़े थे और पास में हनुमान जी महाराज खड़े थे। हनुमान जी ने उसी समय में कहा, ये देखो ये पुष्पक विमान आ रहा है और वो देखो वो राम जी बैठे हैं, वो देखो उनके बाईं तरफ सीता जी बैठी हुई है, वो देखो पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं और उनके पीछे सुग्रीव है, मंत्रियों के साथ में उनके पास विभीषण खड़े हुए हैं। इत्या है पवनात्मज है, ऐसी बात हनुमान जी ने सबको सुनाया। सब लोग एक साथ रहो हो, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। जो घोड़ों पर खड़े थे, जो घोड़ों पर बैठे थे, जो रथों पर थे, जो हाथी ऊपर सवार हुए हुए थे, वे सब अपने अपने वाहन से नीचे उतर गए और विमान की ओर सबकी दृष्टि रही। भरत जी महाराज हाथ जोड़े हुए हूं, वे विमान को यूं हाथ जोड़ रहे थे। अब राम जी के अब दर्शन होने वाले, अब राम जी के दर्शन होने वाले। ततो रामाभ्यनुज्ञातम विमानम अपतत भुवि। उसी समय में विमान धीरे 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 वहां नीचे आया और नीचे आते ही भाई अब राम जी महाराज के गोद में चले गए भरत जी, और वहां बड़े प्रेम से राम जी से वो मिले। राम जी ने अपने छाती से भरत को लगाया, भाई सब कुछ भूल गए, दोनों ही आपस में भूल गए। गोस्वामी जी महाराज तो लिखते हैं कि मन बुद्धि चित अहम इति बिसराई, मन बुद्धि चित अहम सब भूल गए, सब भूल गए। हनुमान जी महाराज इधर मनुष्य आकृति में थे तो वह सुग्रीव आदि सब बानर भी मनुष्य की आकृति में ही हो गए। गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि मनुजाकार भये तिनहितन, उनका शरीर सबका मनुजाकार हो गया, मनुष्याकार बना लिया, सब मनुष्याकार में बदल गए। सुग्रीव है, जामवंत जी है, युवराज अंगद है, महिंद है, द्विविध है, सब मनुष्य की आकृति में। सर्वे ते मानुषम रूपम कृत्वा, मानुष रूप धारण कर लिया। और जब जो है विमान के अंदर ही राम जी के चरणों में शीश नवाया तो वही हनुमान जी ने कहा कि ये सुग्रीव है। अब जो है सुग्रीव को गले लगाकर भरत जी क्या बात बोलते हैं कि हे वानर राज सुग्रीव, आपकी सहायता से हमारे राम जी महाराज रावण को परास्त कर दिए थे, हमको विजय प्राप्त हुई, इसके लिए आज मैं घोषणा करता हूं कि आज दिन तक तो हम चार भाई थे, अब आज से हम पांच भाई हो गए, तुम हमारे भाई हो। तम अस्माकम चतुर्नाम तु भ्राता सुग्रीव पंचम है। फिर शत्रुघ्न जी भी अपने राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से सबसे मिले। इधर राम जी महाराज विमान से बाहर आए तो वहां पर माता कौशल्या जी बैठी हुई के और के कई सुमित्रा सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। भरत जी ने कहा, महाराज कहां पधार रहे हो, ये आपकी चरण पादुका लीजिए। भगवान ने चरण पादुका ली। भरत जी कहने लगे, चरण पादुका के बहाने से मैं अयोध्या का राज्य आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इतने दिन तक आपके चरण थे वो शासन चलाते थे, आज साक्षात आप ही शासन चलाएंगे, अतः अयोध्या के राज परिवार में अब मेरा नाम अलग रहेगा। मैं इस राज लिस्ट में नहीं हूं, आज मेरा जीना सफल हो गया, आज मैं इस अयोध्या को देख रहा हूं तो ये अयोध्या दशरथ जी के समय से 10 गुनी ज्यादा हो गई, सेना की दृष्टि से, कोष की दृष्टि से, और जो है और उन्नति की दृष्टि से दशरथ जी महाराज के समय थी उससे 10 गुना ज्यादा हो गई। अब आप अपने प्रभाव से अयोध्या का पालन कीजिए। राम जी ने ये बात सुनी तब जो है भरद्वाज ऋषि को वंदना की, वंदना करके और वे वहां से अब प्रातःकाल ही रवाना होते हैं। रवाना होते होते वे पुष्पक विमान को बोलते हैं कि देखो पुष्पक, अब तुम अपने मालिक कुबेर के पास चले जाओ। गुरु आगच्छानुजानामि कुबेरम धनपालकम, मुझे पता है कि तू कुबेर का वाहन है, तुम वहां पर चले जाओ। इधर राम जी महाराज ने वशिष्ठ जी का चरण वंदन किया और इंद्र ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राम जी जहां बैठते थे उन्होंने अपने गुरुजनों के लिए आसन खाली रखा, वो आकर बैठ जाए और फिर गुरु महाराज के समीप में विराजमान हो गए। इधर कैकेयी पुत्र भरत है, वो बड़े भक्ति भाव के साथ राम जी के पास आकर निवेदन करने लगा कि हे महाराज, ये राज्य जब आप ले चुके तो मेरी मां कलंक से मुक्त हो गई। आपके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि राम ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के पालन में, कैकेयी की आज्ञा का पालन हो रहा था इसलिए मैंने आपकी आज्ञा के पालन में जोर नहीं लगाया। मैं कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था और वो मैंने की भी नहीं। माता में सत्कृता राम है, अब आपने जो ये राज्य ले लिया तो मेरी मां का सम्मान दुगना हो गया, तो मैं ये राज्य का भार फिर आप ही को लौटा रहा हूं। इस प्रकार से फिर वो चरणों में गिर गई, साष्टांग प्रणाम किया। भरत जी महाराज साष्टांग प्रणाम किए। इधर कैकेयी और गुरु दोनों आए। कैकेयी ने भी कहा राम जी से कि आप अपना जो है शासन ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि अब आप अपना शासन ले लीजिए। राम जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, उन्होंने शासन ले लिया। मायाम आश्रित्य सकलाम, सुनो सुनो पार्वती, जो भगवान माया फैलाने वाले हैं, माया से अखिल जगत का निर्माण करते हैं, जो अपने आनंद में संतुष्ट है, जो सुख और ज्ञान के परम भंडार है और जिनके पास अतिशय आनंद समाया हुआ है, ऐसे भगवान को अयोध्या के राज्य से क्या लेना देना था। और जिनके भ्रूभंग मात्र में अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, उनको अयोध्या से क्या मतलब था। पर यदि अयोध्या का शासन न लेते तो राम जी सारे कुल परंपरा के विपरीत आचरण कर बैठते होते। यस्यानुग्रह मात्रेण, जिनके अनुग्रह मात्र से न जाने कितने ब्रह्मांड बन जाते हैं, उनके लिए अयोध्या का राज्य कितना होता है। फिर भी भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान ने राज्य को स्वीकार किया। अब शत्रुघ्न जी ने वहां पर नाइयों की व्यवस्था की थी, सबके बल जो है ये माथे मुंडित कराए, अभिषेक की सब सामग्री इकट्ठी करी। सबसे पहले भरत ने स्नान किया, फिर लक्ष्मण जी ने स्नान किया, फिर बाणराज सुग्रीव ने, राक्षस राज विभीषण ने, और सब ने अपने अपने स्थल पर जाके शासन किया, वो स्नान किया। और इधर राम जी महाराज भी खूब बढ़िया लंबा चौड़ा अपना जो ये जटा का भार था इसको एकदम दूर करवा करके और स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन करके और जो है वहां पर उपस्थित किए गए। ऐसे लक्ष्मण जी भी उपस्थित हुए, ऐसे भरत जी उपस्थित हुए, और ऐसे ही राम जी के वाम भाग में सीता जी को उपस्थित किया गया। महार वस्त्र भरणी अलन चक्रु मसुमध्यमा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनकर वे वहां पर उपस्थित हुए। तो बानर पत्नियां थी, उन बानर पत्नियों को देखकर कौशल्या जी ने हर्ष के साथ कहा कि देखो ये बानर पत्नियां, इनका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, अपने राजमहल के उत्तम उत्तम वस्त्र ले आओ और इन सब बंदरों को और बंदरियों को पहनाओ। ततः चंदनम आदाय, फिर जो है वे वहां से रवाना होते हैं और अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं उस समय सुग्रीव, युवराज अंगद, हनुमान, विभीषण, इनके वस्त्र देखते ही बनते हैं, आभूषण इनके बड़े सुंदर हैं। ये सब राम जी के साथ चल रहे थे। सुग्रीव की पत्नियां थी, वे सीता जी को आगे किए किए वे जा रही थी। एक क्षण भी कोई राम जी से अलग होने के लिए चाहता ही नहीं था। वज्रपाणी यथा देवीर हरिताश्वर थे स्थित है, जैसे हरे हरे घोड़ों के बने हुए रथ के ऊपर वज्रपाणी इंद्र बैठता है, इसी प्रकार से राम जी महाराज वहां पर रथ पर विराजमान हुए, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके मुख के ऊपर शंख की ध्वनि हो रही है। भरत जी महाराज सारथी बने हुए हैं और शत्रुघ्न जी वहां पर एक रत्नों का दंड लाकर देते हैं, सफेद आतपत्र लाके रखते हैं, श्वेत पत्र आतपत्र माने छत्ता, और लक्ष्मण जी उनके ऊपर चवर डुला रहे हैं, पास में बैठे हुए सुग्रीव है वो दूसरा चरण डुला रहे हैं, देवता और देवताओं के समुदाय, ऋषि ऋषियों के समुदाय, वे सब के सब राम जी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। मानुष रूप लिए हुए बानर वे अपने हाथ में तरह तरह का शंख लिए हुए बजा बजा करके लोगों को आनंदित करते हैं। राम जी का दिव्याति दिव्य धनु स्वरूप देख करके बालक बड़े मुग्ध होते हैं। दुर्वादल श्याम तनु महार किरीट रत्न भरणाद्विचिंताम।